तीर्थयात्रियों ने मंदिर में जो दान दिया है उस पैसे की गिनती हो रही है। गिनने वाली 50-60 महिलाएं हैं, उनमें से कुछ ने फिरोजी और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है जो शायद उनकी वर्दी है। वो लगातार पैसे गिन रही हैं। ज्यादातर दक्षिण भारतीय शहरों के केंद्र में एक मंदिर होता है। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर शहर का केंद्र ये मंदिर 1000 साल पुराना है। स्थानीय निवासी इसे पेरिया कोइल यानी कि बड़ा मंदिर कहते हैं। बाहरी लोग इसकी विशालता को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रस्तर भवन के निर्माण में 10 वर्ष लगे थे और ये चोल स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल है। चोल साम्राज्य 9वीं सदी के अंतिम वर्षों से 13वीं सदी के अंतिम वर्षों तक रहा और चोल शासक भारत की एक सर्वाधिक जटिल संस्कृति को अक्षुण रखने में सफल रहे। भव्य कलश से सुशोभित ये मंदिर सदियों तक भारत का सबसे ऊंचा मंदिर था। जब मध्य युग में ये मंदिर बन रहा होगा तो कावेरी नदी घाटी के किसानों को अपने धान के खेतों के पार पत्थरों की परत दर परत से आकार लेते इस मंदिर को देखना जरूर अचंभित करता होगा। जिस शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया वो हर काम को बेहद भव्य तरीके से करना पसंद करते थे। उनके बचपन का नाम था अरुल मौली वर्मन, लेकिन जब ईसवी सन 985 में वो चोल वंश की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो नाम धारण किया राज राजा यानी राजाओं का राजा। कुछ लोगों का मानना है कि राज राजा और उनके पुत्र राजेंद्र के शासन काल के दौरान भारतीय इतिहास का केंद्र दक्षिण भारत हो गया था। जॉर्ज मिशेल भारतीय पुरातात्विक इतिहास के विशेषज्ञ हैं।
Suddenly this character, Raja Raja, he emerges as the dominant.
उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम अपने नाम राज राजा पर राज राजेश्वर मंदिर रखा। वास्तव में ये मंदिर 11वीं सदी में भारत में बना सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है। यह विशाल मंदिर आज भी राज राजा की आर्थिक ताकत, शानदार स्थापत्य और कलात्मक कौशल का साक्षी है।
हम मंदिर में एक के बाद एक द्वारों को पार करते हुए गर्भगृह में आ पहुंचे हैं। ये एक बहुत ऊंचा कक्ष है, शायद 60 मीटर तक ऊंचा। इसे देखकर आश्चर्य होता है और अद्भुत है यहाँ आकर देखने की अनुमति पाना भी। अंदर के गलियारे में भित्ति चित्रों की एक चक्राकार श्रृंखला है। इन भित्ति चित्रों की खोज 1931 में मद्रास के एक प्रोफेसर ने दिए की रोशनी में की थी। बहुत बार इन चित्रों के ऊपर रंगाई पुताई हो चुकी है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इस प्रकार के भित्ति चित्र आमतौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं, लेकिन यहाँ हिंदू कला के कुछ बेहद शानदार भित्ति चित्रों का खजाना है। मंदिर के आराध्य देव नटराज यानी भगवान शिव का एक विशाल चित्र भी इनमें शामिल है। शिव मुस्कुरा रहे हैं, उनका नृत्य रत पैर अपस्मार का दमन कर रहा है। हिंदू मिथकों के अनुसार अपस्मार अज्ञान का प्रतीक है। शिव की दाईं ओर छतरी के नीचे एक दाढ़ी वाला बलवान व्यक्ति खड़ा है। उसके वस्त्र साधारण है, उसने कोई आभूषण नहीं पहना है। उसके काले बाल जूड़े में बंधे हुए हैं, वो आगे की ओर झुका हुआ है। उसकी दोनों हथेलियां ऐसे खुली हुई हैं जैसे अपने आराध्य की अर्चना कर रहा हो और उन्हें पुष्प अर्पित कर रहा हो। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राज राजा हैं, जिनकी प्रतिमा मंदिर के आराध्य के साथ स्थापित है। हर जगह धार्मिक संस्थाएं लोकोत्तर वास्तविकताओं के साथ लौकिक सामर्थ्य को भी प्रतिबिंबित करती हैं। ये मंदिर जितना भगवान शिव का है उतना ही राज राजा का भी। हम उनके प्रशासन के बारे में जितना जानते हैं उसके मुताबिक ये स्थान राज राजा का राज सिंहासन भी था और उनकी आराधना स्थली भी। इसी जगह से उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाए? इस सवाल का जवाब भी मंदिर के इस चित्र में मिलता है। चित्र में राज राजा के पीछे उनकी 3 रानियां खड़ी हैं।
They're small women and they're made more substantial.
वो तीनों कद में छोटी हैं और हाथों और कमर में भारी आभूषण पहने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर रानी की त्वचा का रंग अलग अलग है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो मूलतः अलग अलग नस्लों की थी, और ये भी बताता है कि राज राजा के अधिकार में कितना बड़ा साम्राज्य था। राज राजा ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी भारतीय शासक ने नहीं किया था। उनके पास व्यापारिक नौकाएं थीं, लकड़ी से बने जहाज थे। उन्होंने सामुद्रिक अभियान चलाए और अपने राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों से संपत्ति लेकर आए। मंदिर का डिजाइन परम सत्ता से उसकी निकटता के साथ साथ मालदीव, इंडोनेशिया और दक्षिणी चीन सागर तक फैले उसके राजनीतिक प्रभाव को भी दर्शाता है। व्यापारिक बुद्धि के धनी तमिल नाविकों ने समुद्री लहरों और मानसूनी हवाओं को मानो अपने वश में कर लिया था। कोरोमंडल के तट से मोती और मसाले लेकर वो आज की बंगाल की खाड़ी के पार जाते थे। तब बंगाल की खाड़ी का नाम चोल झील हुआ करता था। नाविक धातु और चीनी मिट्टी के सामान लेकर लौटते थे। उसके अंश अब भी पुरातत्वविदों को तट पर मिल जाते हैं। अरब दुनिया और चीन के बीचों बीच आने वाले जहाज भी चेन्नई के बलुई तट के दक्षिण में स्थित नागपट्टिनम बंदरगाह पर रुकते थे और राज राजा और उनके उत्तराधिकारी चोल राजाओं को कीमती माल से लदे इन जहाजों से अच्छा कर मिलता था। उस समय भी चीन का समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा था और चीनी जहाज किसके बंदरगाह पर रुके इसे लेकर चोल राजाओं और सुमात्रा में श्री विजय के बौद्ध शासकों के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिस्पर्धा केवल व्यवसाय को लेकर ही नहीं थी। राज राजा के एक समुद्री अभियान में उत्तरी श्रीलंका के बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और मुख्य भूमि पर चोल सैनिकों, तीरंदाजों, तलवारबाज और हाथियों पर सवार सैनिकों ने पड़ोसी राज्यों में भयंकर लूटपाट की। कहा जाता है उनमें से एक राज्य आज के कर्नाटक को 9,00,000 चोल सैनिकों ने रौंद डाला था। यकीनन ये अतिशयोक्ति पराजित राज्य ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए गढ़ी होगी। जैसे जैसे राज राजा विजय हासिल करते गए उनकी पदवियां भी बड़ी होती गईं।
रत्नराज, अद्वितीय चोल, महान रक्षक, सूर्यवंश के रत्न, नृप केसरी।
मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या इस विशाल मंदिर का भवन अपनी ताकत को लेकर राज राजा की असहजता की भी निशानी है। उनकी कोई नौकरशाही नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं, और ऐसे में इस इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद कठिन काम था। उनके साम्राज्य के अधीन स्थानीय राजाओं और ग्राम प्रमुखों, व्यापारी समूहों और गांव के व्यापारियों, ब्राह्मणों और पत्तन नियंत्रकों का एक बड़ा नेटवर्क था और धान उपजाने वाले किसान तो थे ही। कई जातियों और कई स्थानीय संप्रदायों में बटे तब के समाज में बहुत अधिक विविधता थी। इसके अलावा राज राजा बेहद मुश्किल हालात में सत्तासीन हुए थे। उस समय चोल राज्य कन्नड़ शासकों के हाथों मिली हार से उबर रहा था। उनके दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी प्रजा की नब्ज भांप कर उसका विश्वास और भरोसा हासिल किया। चोल वंश का अध्ययन करने वाली अग्रणी भारतीय विद्वान प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी बताती हैं।
Unless you build a temple, you cannot claim to be the sovereign.
जब तक आप कोई मंदिर नहीं बनवाते तब तक आप संप्रभु शासक होने का दावा नहीं कर सकते।
The temple represents the symbol of royal power or political power.
मंदिर उस राजसी या राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है जिसने इस मंदिर में अपने अधीन बहुत बड़े इलाके की सभी प्रकार की कलाओं को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
मंदिर राज राजा का राजकोष भी था। यहाँ वो अर्जित संपत्ति रख सकते थे और उस धन दौलत का एक हिस्सा अपने आराध्य को अर्पित कर सकते थे और इस तरह अपनी शिव भक्ति और प्रजा प्रेम का भी प्रदर्शन कर सकते थे। मंदिर की दीवारों पर राज राजा की दानशीलता और धार्मिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के परित्याग की बातें उल्लिखित हैं। प्रशस्ति लेखों की भाषा मध्यकालीन तमिल है।
अपने शासन के 26वें वर्ष के 14वें दिन भगवान श्री राज राजा देव ने एक पवित्र स्वर्ण मुकुट दान किया जो आडवल्लान से मापने पर 499 करंजू था। उसी दिन उन्होंने एक और स्वर्ण मुकुट भी दान किया जिसका वजन 499 करंजू और 2.5 मंजदी था।
जॉर्ज मिशेल कहते हैं,
इन दीवारों में प्रशस्ति लेखों में न केवल दान की गई वस्तुओं की सूची है बल्कि शुद्ध सोने का भार भी बताया गया है। मैं कहूंगा कि इन दीवारों पर सोने से जुड़े आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। आध्यात्मिक विचारों का उल्लेख कहीं भी नहीं है, इनमें केवल धन संपदा का ही जिक्र है। जैसे राज राजा ने मंदिर को 155 चांदी के बर्तन उपहार में दिए वगैरह वगैरह।
कला के इतिहास में राज राजा का सबसे बड़ा योगदान है भगवान शिव की वो 60 प्रतिमाएं जो हल्की हैं, ठोस कांसे में ढली हैं और जिनमें से अधिकांश को मंदिर निर्माण के समय समुद्र पार से लाया गया था। बेहद लालित्यपूर्ण और अलौकिक सौंदर्य की मिसाल ये चोल कांस्य प्रतिमाएं आज लाखों डॉलर में नीलाम होती हैं। लेकिन चोल शासन के दौरान इन्हें सहायक पुजारी समय समय पर होने वाली रथ यात्राओं में अपने सिर पर रखकर ले जाते थे। ढोल शंख ध्वनि के साथ छत्र धारक चला करते थे। इस धार्मिक जुलूस के आगे आगे एक हाथी चलता था और पुरुष मंत्रोच्चार और महिलाएं नृत्य किया करती थी। निर्धन प्रजा के जीवन में उल्लास भर जाता और श्रेय जाता था राज राजा को। प्रजा की नब्ज भांपकर जनमानस पर राज करने की क्षमता भी एक दक्षिण भारतीय कला है। राज राजा के समय यानी पिछले 1000 सालों में इसका काफी विकास हुआ है। आज भी इस इलाके में उपहार बांटने वाले नेताओं के अपने अपने समर्पित समर्थक हैं।
Everyone will tell you how politics in Tamil Nadu.
हर व्यक्ति आपको बताएगा कि 7 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु की राजनीति कैसे अलग है। यहाँ के लोग उत्साही जोशीले हैं और अपने नेता के प्रति उनका समर्पण अंधभक्ति की हद तक होता है। राज्य की मुख्यमंत्री फिल्म तारिका से राजनेता बनी जयललिता जयराम की ही बात करते हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हो गई थी। यहाँ लोग उन्हें अम्मा कहते हैं और उनके जेल जाने पर उनके दर्जनों अनुयायियों ने आत्महत्या कर ली।
इस महिला का कहना है कि अम्मा की ही वजह से उसके बच्चों को स्कूल बैग मिले और उसके बच्चे स्कूल जा सके। अम्मा उसे 1000 रुपए मासिक पेंशन देती हैं, उसकी मदद करती हैं और उसे साड़ियाँ भी देती हैं।
जब 2012 में मुंबई के लोकप्रिय राजनेता बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो प्रशासन को बड़े पैमाने पर हिंसा और आत्महत्याओं की आशंका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर तमिलनाडु की बात अलग है। यहाँ के नायक नायिकाएं भी देवताओं से होड़ करते हैं। राज राजा के समय के 1000 वर्ष बाद भी उनकी ये राजनीतिक कला पूरे परवान पर है।